أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، میں ایک بار پھر آپ کے سمکش ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں احکام کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم احکام سے سمبندھت تمام پرشنوں کے اتر دیں، اور ہر وہ پرشن جو ہمارے جیون سے سمبندھت ہے، جس پر ہمارا جیون کا آدھار ہے، اس کا جواب ہم کو معلوم ہو سکے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے والے پروگرام میں ہم نے احکام کے بارے میں جانا، احکام کتنے پرکار کے ہوتے ہیں، اجتہاد کیا ہوتا ہے، تقلید کیا ہوتی ہے. ہم نے آپ کو بتایا کہ اسلام کے سارے قانون، اسلام کے سارے نیم تین چیزوں پر آدھارت ہیں، یا وہ قانون یا وہ نیم ہمارے وشواس سے سمبندھت ہیں جن کو اصول دین کہا جاتا ہے، یا وہ نیم ہمارے اخلاق سے مربوط ہیں، یا وہ نیم اور قاعدے اور قانون ہمارے ویوہارک جیون پر آدھارت ہیں جن کو فروع دین کہا جاتا ہے. ہم اس پروگرام میں صرف اور صرف احکام اور فروع دین کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو اس پروگرام میں یہ بھی بتایا کہ تمام احکام دو پرکار کے ہوتے ہیں، یا وضعی ہوتے ہیں یا تکلیفی. وضعی ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو انسان سے سمبندھت چیزوں کے بارے میں ان کا حکم، ان کا آدیش بیان کرتے ہیں. انسان نے نماز پڑھی، وہ نماز صحیح تھی یا غلط، یہ وضعی بتائے گا. تکلیفی وہ احکام ہیں جو انسان کی ویوہارک جیون سے سمبندھت ہوتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا واجب، جھوٹ بولنا حرام. اس کے بعد ہم نے یہ بتایا کہ جتنے بھی تکلیفی احکام ہیں ان کو پانچ بھاگوں میں بانٹا گیا ہے. پہلے بھاگ وہ ہے جس میں واجب ہے، یعنی وہ کار جس کا ایشور نے آدیش دیا ہے، اگر ان کار کو انجام دیا تو ثواب ملے گا، انجام نہیں دیا تو عذاب، جیسے نماز کا واجب ہونا، خمس کا واجب ہونا. دوسرے وہ جن کاریوں کو ایشور نے واجب قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ میرے بندے اگر تو نے انجام دیا تو تجھے عذاب ملے گا، انجام نہیں دیا تو تجھے ثواب ملے گا، جیسے شراب کا پینا، جھوٹ کا بولنا، ان طرح کی تمام چیزیں، یہ سب حرام ہیں. تیسرے وہ جو مستحب ہیں، یعنی ایشور چاہتا ہے کہ ہم انجام دیں لیکن ہمارے اوپر واجب نہیں کیا ہے، اگر انجام دیا تو ثواب ملے گا، اگر انجام نہیں دیا تو کوئی عذاب نہیں ہے اس میں، جیسے نماز شب کا پڑھنا، صدقے کا دینا، ان طرح کی چیزیں جتنے ہیں سب مستحب ہیں. اور اس کے بعد نوبت آتی ہے مکروہ کی. مکروہ وہ چیز ہے جو ایشور چاہتا ہم انجام نہ دیں لیکن اگر پھر بھی انجام دے دیا ہے، اس پر عمل کر لیا ہے، اس کا انجام دے دیا ہے، تو اس کے اوپر ایشور کی طرف سے کوئی عذاب نہیں ہے. جیسے ایشور نے کہا ہے کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ نماز میں تم کالا کپڑا پہنو، اگر پہن لیا تو کوئی عذاب نہیں ہے، لیکن میں چاہتا نہیں ہوں. ان تمام چیزوں کو ہم نے پہلے والے پروگرام بتایا تھا. اس کے بعد آخری قسم جو رہ گئی تھی، آخری بھاگ جو رہ گیا تھا، وہ تھا مباح کے بارے میں. ان کے بارے میں ہم آج بات کریں گے. مباح ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کے بارے میں ایشور کی طرف سے ڈائریکٹ کوئی حکم، کوئی آدیش، کوئی نیم نہیں آیا ہے، اور ہمارے جیون کا ادھکتر بھاگ انہی مباحوں پر آدھارت ہے. ان مباحوں میں اگر انجام دیا تو کوئی ثواب نہیں، انجام نہیں دیا تو کوئی عذاب نہیں. ان میں سے ادھکتر چیزیں جیسے ہمارا کھانا پینا، سونا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب چیزیں مباح ہیں. ان کے بارے میں ایشور نے کوئی آدیش نہیں دیا، تم چاہو تو سو، نہ چاہو تو نہ سو، چاہو تو کھاؤ، نہ چاہو تو نہ کھاؤ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو احکام سے سمبندھت ہیں، ان کو احکام تکلیفی کہا جاتا ہے. احکام تکلیفی پانچ ہو گئے. اس کے بعد چونکہ ہمیں یہ پتہ ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ایشور نے انسان کو جب پیدا کیا تو اس کے لیے ایک دائیت رکھا، اس کے لیے ایک ذمہ داری رکھی اور کہا تمہارا دائیت اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے آدیشوں کا پالن کرو. تو اب یہ پرشن یہ اٹھتا ہے ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں، کہ ہم ईश्वर के उन आदेशों को कैसे जाने? आखिर वो कौन से तरीके हैं जिनसे हमको ये पता चलेगा कि ये ईश्वर का आदेश है? तो हम जब इस्लामी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो हमें तीन रास्ते मिलते हैं। पहला इज्तिहाद, दूसरा तकलीद, तीसरा एहतियात। इज्तिहाद वो रास्ता है कि जिसमें इंसान के अंदर खुद इतनी योग्यता होती है, इंसान खुद इतना पढ़ा लिखा होता है कि इंसान उस पढ़े लिखे होने के बाद उस योग्यता के साथ कुरान से, हदीस से और संबंधित विषयों से ईश्वर के आदेश को निकालने पर कादिर होता है। वो इन चीज़ों से ईश्वर का आदेश निकाल सकता है, तो इसे कहते हैं इज्तिहाद। और जो इंसान इन सब चीज़ों के ज़रिए से ईश्वर का आदेश निकाल सकता है उसको मुज्तहिद कहा जाता है। तो जो मुज्तहिद होता है उसके लिए इस्लाम ने कुछ शर्तें रखी हैं। हर इंसान मुज्तहिद नहीं हो सकता है, बल्कि कहा यह गया है कि जो मुज्तहिद है उसके अंदर कुछ शर्तों का होना ज़रूरी है। जैसे क्या? जैसे वो कि वो बालिग हो, आकिल हो, हलाल ज़्यादा हो, आदिल हो, दुनिया का लोभी ना हो, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें। और हर इंसान इतनी आसानी से मुज्तहिद बन भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मुज्तहिद बनने के लिए बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसके बारे में इंसान की पकड़ का मजबूत होना आवश्यक है, जिसके बारे में उसका मास्टर होना आवश्यक है। उन विषयों में से जैसे सर्फ है, नैव है, मानियो बयान है, और तफसीर है, रिजाल है, इन तमाम ये वो तमाम विषय हैं जिन पर किसी इंसान को मुज्तहिद होने के लिए अधिकार और कमांड होना ज़रूरी है। तो इतना आसान नहीं है मुज्तहिद हो जाना। लेकिन जब हम इस्लाम के आगाज़ से, इस्लाम के आरंभ से देखते हैं, तो उसी आरंभ से इंसान, जब से मुसलमान इस दुनिया में आए हैं, उसी आरंभ से लोग दो प्रकारों में बटे हुए हैं। एक वो जिन्होंने अपने अंदर इतनी योग्यता पाई, वो पढ़े लिखे थे कि उनको समझ में आया कि वो इज्तिहाद के रास्ते पर जा सकते हैं। वो इज्तिहाद के रास्ते पर गए, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने लिखा, उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उनके अंदर इतनी शक्ति पैदा हो गई कि उस शक्ति के बलबूते पर वो कुरान और संबंधित विषयों से ईश्वर के आदेश निकालने पर कादिर हो गए। तो एक ये वो लोग थे। दूसरे लोग वो थे जिनके अंदर, जो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, जिनके अंदर इतना ज्ञान नहीं था, इतनी योग्यता नहीं थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि हम खुद नहीं ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का आदेश प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हम जो है इन मुज्तहदीन की तकलीद और उनका अनुसरण करेंगे। यहीं से इज्तिहाद और तकलीद का द्वार खुलता है, दरवाज़ा खुलता है। तो जो मुज्तहिद है उसके लिए इन ज्ञानों में होना ज़रूरी है, इन ज्ञानों का मानना ज़रूरी है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि जब ईश्वर ने इज्तिहाद और तकलीद का द्वार खोला है तो हर एक के ऊपर इज्तिहाद को वाजिब नहीं किया, बल्कि ये वाजिब किफ़ाई की सूरत में रखा है। और उसने कहा मुसलमानों, पहली सूरत में तो ये है कि सबके ऊपर इज्तिहाद करना वाजिब है, लेकिन अगर कुछ लोग इज्तिहाद कर लेते हैं और उनके इज्तिहाद करने से दूसरों के मसाइल, दूसरों के समस्याएं हल हो जाती हैं, तो अब दूसरों के ऊपर इज्तिहाद करना आवश्यक नहीं है। इसी जगह से एक, चूंकि इस्लाम ने इज्तिहाद का इतना महत्व बयान किया है, दूसरी तरफ से उसने रोका भी है, कहा देखो वो लोग जिनके अंदर इज्तिहाद की योग्यता नहीं है उनको फतवा देने का अधिकार नहीं है, और अगर वो फतवा देते हैं तो उन्होंने हराम काम किया है, हराम काम किया है तो उनके ऊपर अजाब होगा। और यहीं से हमारे बहुत से मसाइल हैं जो पैदा होते हैं कि तरह तरह के लोग फतवे की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और फतवा दे रहे हैं। यही ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को कठिन धर्म बना दिया है। बहरहाल, हम वापस अपनी बहस की तरफ पलट कर आते हैं। तो इंसान या इज्तिहाद के ज़रिए से ईश्वरीय आदेश को प्राप्त कर सकता है या तकलीद के ज़रिए से। और जो इंसान मुज्तहिद है उसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे हमने बयान किया आदिल होना, होना उसके लिए एक शर्त है। अब आदिल किस चीज़ को कहते हैं? हो सकता है कोई हमारा भाई पूछ ले, उसके दिमाग में सवाल हो आदिल क्या मतलब। तो मेरे भाइयों, आदिल उस चीज़ को, उस इंसान को कहते हैं जिसके अंदर अदालत पाई जाती हो। अदालत का मतलब वो न्याय वाला अदालत नहीं, वो कोर्ट वाला अदालत नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी शक्ति है जिसका कार्य ये होता है कि वो इंसान को बड़े पापों से करने से रोकती है और छोटे पापों को बार बार करने नहीं देती है। तो जो मुज्तहिद है उसके लिए ज़रूरी ये है, आवश्यक ये है कि वो आदिल हो। और दूसरी चीज़, उसके लिए ज़रूरी है कि वो आलम हो। आलम हो का क्या मतलब है? यानी वो इज्तिहाद के मसले में, इस्लाम के मसले में, शरीयत के मसले में, कानून के मसले में अपने ज़माने के, अपने युग के तमाम लोगों से ज़्यादा जानता हो और उस संबंधित विषयों से आदेश, ईश्वर का आदेश निकालने पर दूसरों से ज़्यादा सामर्थ्य रखता हो। और तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो मुज्तहिद है वो जिंदा हो, जीवित हो। जीवित हो का क्या मतलब है? यहाँ पर हो सकता है कि हमारा कोई भाई ये प्रश्न करे कि हम ऐसों की तकलीद करते हैं जो मर गए हैं, तो इनके बारे में हम अभी बताते, यहीं पर बताते हुए चलें कि किसी भी मरे हुए स्वर्गवासी मुज्तहिद की तकलीद करना आराम से सही नहीं है। आराम से सही नहीं है क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर कोई इंसान अभी नया नया बालिग हुआ है या किसी कारणवश उसने अपनी पिछली ज़िंदगी में तकलीद नहीं की थी, अब वो चाहता है कि तकलीद करे, अब वो चाहता है किसी मुज्तहिद का अनुसरण करे, तो वो किसी ऐसे मुज्तहिद का अनुसरण और तकलीद नहीं कर सकता है जो मर चुका है। अब यहीं पर दूसरा मसला भी पैदा होता है कि कोई शायद ये कहे कि हम पहले से तकलीद करते हुए आ रहे थे, अब हमारा मुज्तहिद मर गया है तो हम क्या करें? तो इसके बारे में हमारे फुकहा ने, हमारे मुज्तहिद ने विभिन्न प्रकार के मसले बयान किए हैं। अक्सर जो मशहूर फतवे हैं वो ये हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान पहले से किसी मुज्तहिद की तकलीद कर रहा था, अब वो मुज्तहिद मर गया है, तो वो उसी मुज्तहिद के तकलीद पर, उसके अनुसरण पर बाकी रह सकता है। यानी जैसे पहले उसकी तकलीद करता आ रहा था वैसे अब भी उसकी तकलीद कर सकता है, हत्ता कि यहाँ तक कि उन मसलों में भी उस मुज्तहिद की तकलीद कर सकता है, उसका अनुसरण कर सकता है, उसके आदेशों का पालन कर सकता है, उसके फतवाओं पर अमल कर सकता है जिन फतवों पर उसके जीवन में उसने अमल नहीं किया था। जैसे कि कोई इंसान उस मुज्तहिद के जीवन में कभी हज पर नहीं गया, अब वो जब मुज्तहिद मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, वो स्वर्गवासी हो गया, तब उस वो हज के ऊपर जा रहा है, तो वो हज में उसी मुज्तहिद के फतवों के अनुरूप अमल कर सकता है, अनुरूप कार्य कर सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं। इसके बाद के कुछ मसाइल हैं मुज्तहिद और इज्तिहाद के बारे में, जिसको हम इंशाल्लाह अपनी अगली क्लिप में बयान करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।